عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، سب سے پہلے تو ہم صاحب خانہ کو مبارکباد دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گھر ان کو مبارک فرمائے، خیر کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ یہ گھر میں اپنے احباب کی دعوت یہ رکھی رہے تھے، تو ساتھیوں کا تقاضا یہ ہوا کہ کچھ دین کی باتوں کا مذاکرہ بھی ہو جائے، دین کے تقاضے بھی کچھ سامنے آ جائیں، تو اس لیے وہ دونوں چیزوں کو ملا کر وہ ایک تقریب سے ہو گئی ہے کہ یہاں ان شاء اللہ تعالیٰ برکت ہے، دین کی بات بھی ہو جائے گی، کیونکہ دین کی بات کے کرنا برکت کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقاضوں کا مذاکرہ ہوگا. ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے کہ ایمان والوں کو یاد دلاؤ، یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے. مذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ، یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. تو جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، موقع موقع سے اگر ہم یاد دلائیں گے اپنے آپ کو، انشاءاللہ پاک ذات سے امید ہے کہ فائدہ ضرور ہوگا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پاک میں ہے کہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے یاد دلانا، تو دیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. صرف یہ ہے کہ یاد دلانے والا اور جن کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ، یعنی سامع اور متکلم، دونوں میں اخلاص شرط ہے کہ ان کا یہ سننا اور کہنا اخلاص کی بنیاد پر ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. فائدہ ضرور ہوگا. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب ذرائع ہیں. مکان خریدا یہ ذریعہ ہے، گاڑی خریدی جائے یہ ذریعہ ہے، مال و دولت ذریعہ ہوتا ہے. خود انسان کے جو انفسی نعمتیں ہیں، ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک کان، یہ سب ذرائع ہیں. یہ ذرائع جو ہے وہ خیر کے بھی ہیں اور یہ ذرائع شر کے بھی ہیں. ذریعہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں، اس کا خیر اور شر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چاقو ذریعہ ہے، چاہے سیب کاٹو چاہے کسی کا پیٹ پھاڑو، چاقو ذریعہ اپنی ذات میں ذریعہ ہے وہ، لیکن وہ خیر کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ شر کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. اور پوری زندگی ایسی ہی ہے، بلکہ پوری دنیا ذریعہ ہے، یا خیر کا ذریعہ ہے یا شر کا ذریعہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی ذریعہ ہوتا ہے غلہ نکالنے کا، کھیتی جو ہے وہ ذریعہ ہے کس کا؟ غلہ نکالنے کا. اور غلہ نکالنا ذریعہ ہے روٹی حاصل ہونے کا، روٹی حاصل ہونا ذریعہ ہے پیٹ بھرنے کا، پیٹ بھرنا ذریعہ ہے خون بننے کا، وہ ذریعہ ہے زندہ رہنے کا، طاقت آنے کا، اور وہ سب ملا کے وہ ذریعہ ہے آخرت کے لیے. کیونکہ طاقت آئی تو کیا کرنا ہے، آخرت کو کمانا ہے. دنیا مزرعۃ اللہ، اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے، رحمت کا ذریعہ بنائے، گھر خریدا اپنے برکت کا ذریعہ بنائے، یعنی یہ شر کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نہ بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، شر کا ذریعہ نہ بنائے. چاہے خیر کا ذریعہ بنے چاہے شر کا ذریعہ بنے، آدمی کو اپنا کردار اس میں ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کی اپنی حرکت کی وجہ سے وہ یا خیر کا ذریعہ بنے گا یا شر کا ذریعہ بنے گا. وہ کیا کرے گا، وہ کیا کر رہا ہے، گناہ کرے گا اس کو لے کر اس کے ذریعے سے تو شر کا ذریعہ بن جائے، نیکی کرے گا تو خیر کا ذریعہ بن جائے، اللہ کو راضی کرے گا تو وہ خیر کا ذریعہ ہوگا، اللہ کو ناراض کرے گا تو وہ شر کا ذریعہ بن گیا. अगर हम इसको थोड़ा सा फैला के मुताला करें इस बात का, तो फिर वो पूरी अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई होता है। जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें दुनियावी नियमतों से माला माल फरमाया है, ये सारी की सारी नियमतें चाहे बाहर की हों, माल व दौलत, जायदाद, सामान वगैरह, या अंदर की हों, अनफुसी नियमतें कहते हैं उसको, अल्लाह ने दिल दिया, दिमाग दिया, अल्लाह पाक ने हाथ पांव दिए, आँख नाक दिए, कान दिए, अकल अता फरमाई, ये सब के सब जरिए ही। और पूरी की पूरी दुनिया के मजमूए को अल्लाह ने जरिया ही बनाया है। खैर बनाओ या शर बनाओ, दुनिया जन्नत कमाओ या जहन्नम कमाओ, उस कमाई का यह जरिया है। इसलिए इंसान के इस बनाने को कसब कहा जाता है, कमाई कहा जाता है। लहा मा कसबत वालेहा मक्तसबत, जो उसने कमाया वो उसके लिए, और जो अपने मुकाबले में कमाया वो उसके मुकाबले। आला जो है ना नुकसान के लिए आता है, लाम फ़ायदे के लिए आता है। लहा उसको फ़ायदा उसका होगा जो उसने कमा लिया, आलिया उसका नुकसान उसको होगा जो उसने कमा लिया। कसब ये बंदा कासिब होता है, अल्लाह खालिक होता है। सूफिया की इस्तिलाह है, इल्म तसव्वुफ के उलूम में से ये बात है कि फेल एक निस्बत दो। आपने कभी सुना होगा बुजुर्गों से, पूरी दुनिया में फेल एक ही होता है, निस्बतें दो होती हैं। जितने काम होते हैं उसमें फेल एक होता है, निस्बतें दो होती हैं। जैसे तबलीग कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उधर वो दूसरी साइड में शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, फेल एक निस्बत दो। बंदे की तरफ निस्बत जो है ना कसब की होती है, और अल्लाह की तरफ निस्बत खल्क की होती है। अल्लाह खालिक है हर शय का, अल्लाह खालिक है, हमारा भी है तो तमाम अमाल का भी है, अच्छे अमाल का भी है, बुरे अमाल का भी है। खालिक वही होता है, खालिक गैरुल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह का गैर खालिक नहीं होता। तो बुराई का खल्क कैसा करते हो, तो उनके लिए खल्क खल्क बुरी चीज़ नहीं है। चाकू बनाना बुरा नहीं है, इख्तियार करने वाले पर है कि उसने काहे के लिए इस्तेमाल किया उसको। उन्होंने जो कुव्वत और जो एनर्जी जो सलाहियत वो पैदा करना था वो पैदा कर दिया, बंदे को इजाज़त दी इम्तिहान के वास्ते कि तू अच्छा करेगा तो भी चांस दूंगा तुझे, तू बुरा कर लेगा तो भी चांस दूंगा तुझे। तो उनके एतबार से नस्बत खल्क की होती है, और बंदे के एतबार से नस्बत कसब की होती है। ये पूरी दुनिया हमारे लिए जाए कसब है, जिसको हदीस शरीफ में यूँ बयान फरमाया गया कि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में हमारा आना, हमारा वजूद, हमारी सांसें, एक एक सांस जो है ना ये हमारी आखिरत का जरिया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि हर सांस में अल्लाह तबारक व तआला का दो शुक्र दो मरतबा शुक्र बंदे के ज़िम्मे वाजिब होता है हर सांस में, क्योंकि एक सांस छोड़ने का, एक सांस लेने का। ऊपर गई तो सांस अगर उधर ही रह गई तो भी मर जाती, बाहर गई तो सांस अगर उधर ही रह गई तो भी मर जाती। सांस लेने का एक शुक्र है और सांस छोड़ने का एक शुक्र है। इसीलिए सूफिया जो है ना वो पासे अनफास का जिक्र बताते, छोड़ते वक्त एक वक्त अल्लाह बोलो, लेते वक्त एक मरतबा अल्लाह बोलो। पासे अनफास का मतलब ही वो रहता है कि सांस छोड़ते हुए भी अल्लाह कहना और सांस लेते हुए भी अल्लाह बोलना। आदत डालने से आदत सब चीज़ की होती है तो इसकी भी होती है, ताकि दो मरतबा अल्लाह का जिक्र हो के दो मरतबा कम अज़ कम अल्लाह ताला की याद हो जाए, शुक्रिया अदा हो जाए। और कमा हक हो तो शुक्र अदा हो भी नहीं सकता, इसलिए कि वो अल्लाह बोलने पर फिर एक और एक शुक्र होता है कि अल्लाह की तौफीक तुझे हुई। तो वो तो ये है कि अलइज्ज़ु आजिज़ी जो है और इकरारुल इज़्ज़ जो है, बस ये सबसे बड़ा शुक्र है। सब में पहले शुक्र जितना बंदा अदा हो सकता है अदा कर सकता है करे, उसके बाद में इकरार करे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अब जाके बात पूरी होती है। वो अंता कमा असनैता अला नफ्सी ला नफ्सी सनान अलैक, हुज़ूर से ज़्यादा तारीफ़ करने वाला अल्लाह की कौन है, इतनी तारीफ़ की इतनी तारीफ़ की, उसके बाद आखिर में बोले हम नहीं कर सकते तारीफ़, आप तो ऐसे हैं जैसे आप हैं बस। आप अपनी तारीफ तो आप खुद ही कर सकते हैं, और किसी के बस की चीज़ नहीं।
सुभान
अब जाके बात पूरी हुई वो अंतकमा हसने थाला नफसी का। तो हक थाला शानहु ने जो नियमतें हमें दी हैं, इन नियमतों से आखिरत का कसब करना है, कमाई करनी है, हमारा वजूद, हमारी सलाहियतें, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी ज़ुबान, अल्लाह पाक ने इनका मसरब बनाया कि तुम खैर इससे कैसे कमाओगे, कैसे बनाओगे। सबसे ज़्यादा इनमें आदमी को जो अमल करने के अतबार से पेश आता है वो कौली भी होता है। इसी वजह से कौल के ज़रिए से दावत का हुक्म दिया जाता है, अमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ज़खीरे आखिरत करना, आखिरत के लिए तैयारी करना, आखिरत की कमाई करना और अल्लाह को राज़ी करना कौल के ज़रिए से करो, पूरे वजूद से भी होता है। अमन अहसन दीन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह व मुहसिन। दीन के अतबार से सबसे ज़्यादा बेहतर वो है कि आदमी अपनी पूरी ज़ात उनकी तरफ कर दे, और कौल के अतबार से सबसे बेहतरीन वो होता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। सुबह से शाम तक आदमी की ज़ुबान बुलाने में रह सकती है क्योंकि वो थकती नहीं है। अब हम इसको ज़रिया बनाते हैं शर का, क्योंकि इसके ज़रिए से हम बड़े बड़े गुनाहों का इरतकाब कर डालते हैं। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 20 बड़े गुनाह आदमी की ज़ुबान से मुतालिक हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहते हैं। बड़े गुनाह हो गए, तौबा किए बगैर माफ़ नहीं होने वाले। लेकिन अगर एक आदमी इसी ज़ुबान को खैर के लिए इस्तेमाल कर लेगा, दावत के काम के लिए इस्तेमाल कर लेगा, ये सबसे बेहतरीन खैर के लिए होगा। जिक्र के लिए करेगा, इस्तिग़फ़ार के लिए करेगा, दुरूद शरीफ़ के लिए करेगा, जिक्र, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ़, तिलावत वगैरह, ये तमाम जिक्र हैं ये, और इसमें अफ़ज़ल ज़िक्र भी हैं, कुरान पाक की तिलावत अफ़ज़ल ज़िक्र है। लेकिन ये ज़ाती इबादत है, और मुतअद्दी इबादत हमेशा ज़्यादा सवाब दिया करती है ज़ाती इबादत से, इसलिए दावत की फजीलत ज़्यादा है। असल बात यह है कि आप सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो इस पर भी सवाब है, लेकिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से आप किसी को बुलाए नहीं, लिहाजा ये आपका अपना ज़ाती कमाई है। लेकिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है तो ये मुतअद्दी कमाई है। आप भी आ गए, 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 हाँ, 1000 आदमी आ गए, 1,00,000 आदमी आ गए, 10,00,000 आदमी आ गए। अब वो जितना जिक्र करेंगे वो सब तुम्हारा भी है, तो ये कमाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, रिटेल का और होल सेल का फ़र्क है। ज़ुबान से आदमी कमाता है, रिटेल की कमाई है, तस्वीर पढ़ रहा है अपनी ज़ात से जो कुछ कमाएगा। लेकिन अगर उसने जुना वाला एक ऐसा सिलसिला जारी किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी बात पहुंच गई और लोग मुतवज्जे हो गए अल्लाह की तरफ, तो न सिर्फ ये कि उनकी तस्बीहात इसके अकाउंट में आ जाएंगी, उनके दूसरी इबादतें भी सब आ जाएंगी, नमाज भी, रोज़ा भी, ज़कात भी, हज भी, दीन की जद्दोजहद भी, कुर्बानी भी, सदक़ात भी, खैरात भी। कोई हाफिज़ बन गया तो वो, कोई आलिम बन गया तो वो, कोई अल्लाह के रास्ते में जहद मुजाहिदा करने वाला बन गया तो वो, दाई बन गया कोई, वो जो भी बन गया। इसलिए वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ फरमाया कि कौल जो दावत इल्लाह का जो कौल है वो सबसे उम्दा इसलिए बनता है यहाँ पे। हालांकि समझ में आती है बात कि भाई दूसरे अमाल तो इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं ज़ाती एतबार से देखा जाए तो, वो ज़ाती नफ़ा है, इसलिए मुतअद्दी नफ़ा होने के वास्ते तो दावत चाहिए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो नियमतें हमें दी हैं ना, इसको ये ज़रिया हैं। लेकिन अब ये बड़ा बड़ा भी ज़रिया बन सकता, खैर का भी बन, पहले तो खैर का भी बन सकते हैं, शर का भी बन सकते हैं। नंबर दो, खैर और शर के अंदर बड़े खैर का भी बन सकते हैं, छोटे खैर का भी बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी ज़ुबान की मिसाल दी है, ये बड़े खैर का भी ज़रिया बन सकते हैं, छोटे खैर का भी ज़रिया, ऐसे ही बड़े शर का भी ज़रिया बन सकते हैं, छोटे शर का भी ज़रिया बन सकते। ऐसी बात कर दी जिससे फितना फसाद हो गया पूरी दुनिया में, बड़ा शर हो गया नहीं हो गया, ऐसी बात चला दी जो फितने का बाइस हो गई, बड़ा शर हो गया। बहुत थोड़ी सी हरकत में, ज़ुबान की बहुत थोड़ी सी हरकत में बहुत बड़े असरात होते हैं, ये अजीब बात है। जब शादी होती है तो ज़ुबान की हरकत बहुत थोड़ी सी है, कबील तो अरबी में तो कबील तो है खाली, मैंने कबूल किया, कितने सेकंड में बोला आदमी कबील तो, कैसे तब्दीली आई पूरी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली है। एक हलाल हराम रिश्ता हलाल हो जाता है, शादी हो जाती है, ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। ऐसे ही खुदा ना खास्ता हज़ार बार खुदा ना खास्ता अगर निकाह टूटने का नौबत आए तो उसमें कितने लफ्ज़ क्या लफ्ज़ बोलना पड़ता है, उसमें भी एक ही लफ्ज़। खरीदो फरोख्त में क्या करता है आदमी, एक ही जुमला बोलता है, भाई यार मैं मकान लेना चाह रहा हूँ। हाँ मैं मकान बेचना चाह रहा हूँ, हो गई बात। मैं उसने कहा मैंने ख़रीदा, इसने कहा मैंने बेचा। जो ईजाब कबूल वहाँ होता है ना, वो ईजाब कबूल खरीदो फरोख्त में भी, बिज़नेस में भी, शरी एतबार से बिज़नेस में भी वही असल एतबार होता है उसका। अब कोई फिर जाना नहीं, ये नहीं होना, वो नहीं होना, बल्कि बहुत से पाक पार की है, वो है बेचारा आदमी इन्वॉल्व होकर उसमें अपने अपने जो है ना गंगा में हाथ धोते हैं, पैसे बनाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बाकी बेचू इस तरह तो चाहे असल बेचा खरीदा, मामला पूरा उतना ही असल देखा जाए। इससे आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं कि कौल के अंदर, बात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कितना कितने कितना फैलाव रखा हुआ है, कितनी अखलासी रखी हुई। ईमान का कलमा एक आदमी ज़ुबान से बोलता है, 70 साल के पाप, पूरी उम्र भर के जितने भी गुनाह थे, शेर जैसे गुनाह, वो भी माफ़ हो जाते हैं। कुफ्र का कलमा आदमी बोलता है, कलमे कुफ्र जब आदमी की ज़ुबान से निकलता है, पूरे ज़िंदगी भर के जो आमाल हसन है वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअ इलल्लाह, दावत इलल्लाह की अहमियत बड़ी अजीब व गरीब है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का अमल करना। इसलिए मेरे भाइयों, दावत के इस मुबारक काम को अपना काम बनाने की तरगीब दी जाती है, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी मसरूफियत रखते हों, स्टूडेंट हैं तब भी, जॉब करते हैं तब भी, और जॉब से फरागत हो गई है, रिटायरमेंट ले लिए हैं तब भी, जॉब ही नहीं है तब भी, यस उम्र के अतबार से बड़े कबीर उसी ने ज़्यादा उम्र हो चुकी है तब भी, सेहत के अतबार से ज़्यादा सेहत साथ नहीं देती तब भी, हर हालत में दीन का जो है, दीन की मेहनत करना और दावत का काम करना, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाने की ज़रूरत है। ये उम्मत की एक इंतहाई स्पेशल खासुल खास सहूलत है, फजीलत है जो उम्मत को, या अपॉर्चुनिटी है जो इस उम्मत को दी गई। पिछली उम्मतों की खसूसियत ये थी कि जब बुराई आम हो जाती थी और लोग करना छोड़ देते थे तो नबी आ जाते थे, क्योंकि उनके नबी, उस ज़माने के नबी आखिरी नबी नहीं होते थे। तो उम्मत से वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती थी, जब दूसरा नबी आ गया तो नबी वो कर लेता था, वो टेक ओवर कर लेता था, वो असल जिम्मेदार वो हो जाता था। अब दूसरे लोगों के जिम्मे उसी की इत्तिबा होती थी, समझे। दावत का काम था पहले भी, लेकिन वहाँ ये सहूलत, ये बात नहीं, ये खसूसियत नहीं थी। प्लस एक बात और भी है, वो ये कि वो लोग थे महदूद एतबार से, कोई कौम की तरफ था, कोई मुल्क की तरफ था, कोई शहर की तरफ था, कोई ख़ास तादाद की तरफ था, कोई कबीले की तरफ था, कोई ख़ानदान की तरफ नबी बना के भेजा गया था। तो उसके मानने वालों का सर्कल भी तो वही होगा ना, फिर शहर वालों का सर्कल शहरी होता था, कौम वालों का सर्कल कौमी होती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुझे और आपको जो शर्फ़ हासिल हुआ है मेरे दोस्तों, वो ये है कि पूरी दुनिया, आलम, पूरा आलम जो है ना, ये दावत का मैदान है, और क़यामत तक का टाइम ये दावत का मैदान है। पूरी इंसानियत, ना शहर है, ना कौम है, ना इलाका है, ना वतन, कुछ नहीं, पूरी दुनिया। बल्कि इसमें तो इतना तवस्सुह है कि इंसान भी इसमें शामिल है और जिन्नात भी इसमें शामिल है, और क़यामत तक का ज़माना है। और पूरी की पूरी दुनिया अगर बुराई पर आ जाए तो भी कोई नबी आने वाले नहीं। इसलिए उम्मत के हर हर फर्द को यह मौका है कि तुम जितना कमा सकते हो कमा लो, वरना दूसरे लोगों के लिए यह मौका नहीं था कि जितना कमा सकते हो कमा लो। पूरी दुनिया समेटना है, पूरी दुनिया समेट लो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत अता फरमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है ये चीज़, कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी हैं, हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए हैं, आखिरी नबी हैं, आलमी भी हैं और आखिरी भी हैं, तो उसकी वजह से इन दोनों चीज़ों का ख़ास फ़ायदा उम्मत को मिला है। उम्मत के ख़वास, उम्मत के आवाम, पढ़े लिखे, बे पढ़े लिखे, गरीब, अमीर, इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ताकीद फरमाई उम्मत को इस मुबारक अमल के अंदर अपने आप को लगाने की। पूरे साहबे किराम को इसमें झोंक दिया था, सबको लगा दिया कि तुम ये काम करो। अख्ताए आलम के अंदर, ज़मीन के कोने कोने तक चले जाओ, 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पहुँचा दिए, पूरा अतराफ के अतबार से अगर देखा जाए। تعالیٰ شانہ نے ایسا فضل فرمایا اور قیامت تک کے واسطے ٹائم. تو یہ جو موقع ہے اس میں امریکہ والوں کو تو اور زیادہ اچھا ہے, اس لیے کہ یہاں پر محنت کرنے والے کو پوری دنیا میں محنت کرنے کا موقع حاصل ہے. ملٹی نیشنل جگہ ہے نا بھائی, ایک سب کے اندر ایک جگہ کے بھی ہوگا تھوڑا ہی ہے. اپنے انڈیا میں ایک سب کے اندر انڈیا کے ہیں پورے, دوسرے کہاں رہتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی رہتا ہے, بلکہ انڈیا کے پورے کہاں رہتے؟ جس علاقے کے ہیں اس علاقے کے ہی رہتے, جس محلے کے ہیں اس محلے کے رہتے, اس شہر کے بھی نہیں رہتے. اور یہاں پہ ایک سب کے اندر کالا بھی لے لو گورا بھی لے لو, گورا چار قسم کا کالا چار قسم کا, زبان الگ وہ الگ. اگر یہاں دین کی محنت کی جاتی ہے تو ہر ہر نسل میں, ہر ہر قوم میں, ہر ہر ملک میں, ہر ہر علاقے میں کام کرنے کا موقع اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دیا ہوا ہے. جتنے زیادہ ذرائع حاصل ہیں اتنی زیادہ اپرچونیٹی ہے اور اتنی زیادہ ذمہ داری ہے, موقع ہے. یا تو اس کو ضائع کر دو یا تو اس کو قیمتی بنا دو. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو تو یہ طے کرنا ہے میرے دوستوں کہ اس مبارک محنت کے اندر ہمیں لگانا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ زندگی میں سب سے قیمتی عمل اور سب سے سمجھداری کا کام یہی ہے, سب سے سمجھداری. اس لیے کہ اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا. تم یا تو وقت کو کاٹ لو یا وقت تمہیں کاٹ دے گا, یا تم اپنے یا وقت کو تم قابو میں لے لو یا وقت تم کو قابو میں لے لے گا, یا یوں کہہ لیجئے کہ وقت کو تم کھا لو یا تمہیں وقت کھا جائے گا. ایک ہی مرتبہ چانس ہے آدمی, بار بار زندگی نہیں ملتی, ایک ہی زندگی ہے دنیا میں کام کرنے کے بعد. تو اس پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی بنایا, اور جتنے سورسز ہمیں حاصل ہیں, جتنے ذرائع, جتنی چیزیں حاصل ہیں, وہ سب ذریعہ ہیں. چونکہ ہم اس کو خیر کے لیے استعمال نہیں کر رہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح ہم اس کو شر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنے آنکھوں کو شر کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے کانوں کو شر کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہم اپنی زبان کو شر کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں پیروں کو شر کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور کس کس راستے سے شر کے لیے استعمال کرتے. جب فسو فترا ادھر کشف الغبار افرسن تحت رجل کا ہمارو, جب غبار چھٹے گا اور آخرت میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون کون سی چیز کس کس کے لیے ہم نے استعمال کی تھی. بعض مرتبہ تو بالکل بظاہر پاک صاف آمدنی بھی پاک صاف نہیں رہتی کمانے کے اعتبار سے. ایک مضمون ذہن میں آیا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, لیکن مصلحت نہیں معلوم ہو رہی اس لیے نہیں سنا تھا. کیونکہ ہماری کوئی صلاحیت اگر دشمن کے کام آتی ہے اور وہ دشمن اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے تو کل ہماری گردن بھی ناپی جائے گی اس. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. ہماری صلاحیت سے دشمن کو فائدہ ہوا اور دشمن نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اس صلاحیت کو یوز کیا, تو چونکہ وہ جو صلاحیت استعمال ہوئی وہ دشمن کے کام آئی اور دشمن کو آپ دیے, سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ لہذا جب حساب کتاب ہوگا تو وہ پورا سلسلہ دیکھا جاتا ہے اس میں کون کون تھا بیچ میں. پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہوتا ہے. اگر ان کو شبہ ہو جائے کہ یہ غلط چندہ گیا تھا, ان کو شبہ ہو جائے کہ غلط ایکٹیویٹیز ہوئی تھی, تو پورا کھود ڈالتے کون کون بیچ میں تھا, کون کون راستے میں تھا, اس کے سب کو پکڑتے ہیں یہاں سے وہاں تک. جب یہ دنیا کے اندر ایسا ہے تو آخرت میں کیسا نہیں ہوگا یہ. تو اللہ پاک نے ہمیں ذرائع تو دیے ہیں, لیکن ان ذرائع کو استعمال کرنا سمجھداری کے ساتھ میں, یہ ہماری فہم ہے, ہماری ذمہ داری ہے. یہ اپنے آپ تو بہترین کیا ہے کہ دین کے لیے استعمال ہو جائے. اس ملک میں رہتے ہوئے اگر ہم دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے سورس ہم کو دنیا میں یہاں حاصل ہیں اس ملک میں, وہ سب خیر میں استعمال ہونا شروع ہو جائیں. ہمارا گھر خیر کے لیے استعمال ہو, ہماری گاڑی خیر کے لیے استعمال ہو, ہماری صحت خیر کے لیے استعمال ہو, ہماری عمر خیر کے لیے استعمال ہو, ہمارا بولنا سننا, ہماری ایکٹیویٹیز, یہ جو ہے نا وہ خیر کے لیے استعمال ہو جائیں, تو پھر ذخیرہ آخرت بن جائے. اس لیے دین کی محنت کرنا ہماری ذمہ داری میں اللہ پاک نے رکھا ہے. ہماری عبادت میں عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے. عبادت اور دعوت ملا کے عبادت مکمل ہوتی ہے ہماری. خالی عبادت بغیر دعوت کے عبادت مکمل نہیں ہوتی, چونکہ عبادت تو بندگی کا نام ہے. بندگی کہتے ہیں جو بولے وہ کرنا, تو نماز پڑھو بولے نماز پڑھے, دعوت دیو بولے وہ نہیں دے رہے, دین کی محنت کرو بولے وہ نہیں کر رہے, سنت کی اتباع کرو بولے وہ نہیں کر رہے. تو کہاں سے عبادت ہوگی؟ ادھوراپن ہو گیا نا. ہماری عبادت کی تکمیل دعوت سے ہوں گی, عبادت کے ساتھ ساتھ. اس لیے ومن احسن القول ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. خالی دعوت پر قناعت کر لے کے بیٹھ گیا, عمل صالح نہیں کرا تو بھی نہیں ہوگا کام. عمل صالح تو کرنا ہی ہوں گا لیکن دعوت بھی کرنا ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں ليعبدون میں سب چیز آ گئی, نماز روزہ بھی آ گیا, دین کی محنت بھی آ گئی, اور دوسرے کام بھی آ گئے, کمانا بھی آ گیا, خرچ کرنا بھی آ گیا, بیوی بچوں کا پالنا بھی آ گیا, دنیا سے متمتع ہونا جائز طریقے پر وہ بھی آ گیا. کھاؤ پیو مزے کرو, منع نہیں ہے جائز حدود کے اندر. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز طریقے پر حلال طریقے پر مرحمت فرمایا ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کرنا, اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی چھوٹ ہے اور اللہ ہی کی طرف سے اجازت ہے, وہ بالکل ہمارے لیے صحیح ہے. مگر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو اس لیے وہ ذمہ داریوں میں اگر ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ پاک کے لیے دین کی اللہ کی عبادت کرنا اور دین کے دوسرے احکام کو پورا کرنا بڑا آسان ہمارے لیے ہو جاتا ہے, کیونکہ محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے, محنت کے ذریعے سے جذبہ بن جاتا ہے, محنت کے ذریعے سے یقین بن جاتا ہے, محنت کے ذریعے سے اللہ کا تعلق مل جاتا ہے, محنت کے ذریعے سے آدمی کی نیت اور ارادی اور ارادے اور فکر اور سوچ یہ پوری اللہ تعالیٰ کے رخ پکڑ لیتی ہے. اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر نماز بھی آسان, پھر روزہ بھی آسان, پھر زکوٰۃ بھی آسان, پھر حج بھی آسان, پھر اتباع سنت بھی آسان, پھر بچوں کی تعلیم و تربیت بھی شرعی اعتبار سے دینی اعتبار سے آسان, پھر گھر میں گھریلو زندگی بھی آسان, ساری دوسری چیزیں ہمارے لیے بھی آسان ہوں گی, اور پھر محنت کرنے سے ماحول بنتا ہے, ماحول سے سب کے لیے آسان, سب کے لیے آسان ہونے سے اپنے لیے آسان, اپنے لیے آسان ہونے سے سب کے لیے آسان. اگر ماحول نہیں بنا تو سب کے لیے مشکل, سب کے لیے مشکل تو اپنے لیے بھی مشکل. ہم اپنے دیار میں اپنے بڑوں سے سنتے رہتے تھے کہ اگر 25 آدمیوں 25 بے نمازیوں میں ایک نمازی کو آپ چھوڑ دیں گے تھوڑے دن میں وہ بھی بے نمازی ہو جاتا, اور اگر 25 نمازیوں میں ایک بے نمازی کو چھوڑ دیں گے تو تھوڑے دن میں وہ بھی نمازی ہو جاتا ہے. ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے. تو محنت کرنے سے ماحول بنتا ہے. تو اسی وجہ سے دین کی محنت ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہے, جیسے وضو ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہے, نماز بعد میں ہے. محنت کریں گے تو ذوق بنے گا, فکر آئے گی, اور تجربہ بھی ہے. پوری دنیا میں جب دین کی محنتیں شروع ہوئی اور ہو رہی ہیں جہاں جہاں ہو رہی ہیں, تو اس دین کی محنت کے ذریعے سے لوگوں میں طلب آئی, لوگ نمازی بنے, مسجدیں بننا شروع ہو گئیں, چونکہ لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھنا تھا. بچے ہوئے لوگوں کو, ان کو اپنی ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہوئی, مدرسے بننا شروع ہو گئے, لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا تھا. حافظ بننا شروع ہو گئے, چونکہ لوگوں کو اپنے بچوں کو حافظ بنانا تھا. عالم اور مفتی بننا شروع ہو گئے, چونکہ لوگوں کو اپنے بچوں کو عالم اور مفتی بنانا تھا. حلال کی دکانیں کھلنا شروع ہو گئیں, اس بات سے کہ لوگوں کو حلال کھانا تھا. یہ سلسلہ ہوتا ہے. جب لوگوں میں دین کی طلب آتی ہے, شوق آ جاتا ہے, تو پھر دین کے جو دوسرے تقاضے ہیں وہ پورے ہونا شروع ہوتے ہیں. اس لیے ترتیب کے اعتبار سے دعوت کا نظام پہلے چلتا ہے. جتنا زیادہ دعوت پر محنت ہوگی اتنا زیادہ دین کا ماحول بنے گا اور دینی شعبے زندہ ہوں گے. اسی لیے دشمن سب سے زیادہ دعوت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا نشانہ دعوت ہے. یہ کسی طریقے سے یہ دعوت میں لگے نہیں اور دوسرے ثواب کے کاموں میں لگ لے, دین کی محنت میں نہ لگے. دین کے کام اور بھی ہیں, اسے وہی کر لو. چلو تمہارا اگر شوق ہو رہا ہے تو تم دوسرے تسبیح لے کے پڑھ لو. کتنے دیندار ہم نے دیکھے ہیں, اور ہم کون سے صحیح ہیں اس میں, سبھی برابر اس میں برابر ہوتے ہیں. پہلے تو دیندار نہیں ہوتے ہم لوگ, اور جب اگر دین کا رجحان ہوتا ہے تو دین کے کاموں کی طرف طبیعت زیادہ چلتی ہے, محنت کی طرف طبیعت نہیں چلتی, دین کی محنت کی طرف نہیں چلتی. بیٹھ کے پڑھنے کی طرف چلے گی, قرآن پاک کی تلاوت کی طرف چلے گی, ذکر کی طرف چلے گی, تلاوت کی طرف چلے گی, تسبیح کی طرف چلے گی, صدقہ خیرات کرنے کی طرف چلے گی, غریبوں کی شادی کرا دو اس کی طرف چلے گی, کیونکہ وہ محنت نہیں ہے نا وہ, بلکہ اس میں اور زیادہ آپ کو اعزاز ملتا ہے. ارے فلاں صاحب آئیے, انہوں 10 آدمیوں کی شادی کرائے, انہوں 10 بچوں کی شادی کرائے, یالی دلہا ہوتا ہے بیچ میں, حال پوروں کے حال ملتے ہیں, دعوتیں ملتی ہیں, نام ہوتا ہے, اخبار میں آتے ہیں, اب تو فوٹو ووٹو بھی آ رہے ہیں بعد, اب تو وہ پورے 10 کے 10 دولوں کو بٹھا کے اس کے ساتھ بیچ میں ان کی فوٹو آ رہی ہے, انہوں یہ 10 کی شادی کرائے تھے.
हालांकि उन्हें ज़कात के पैसों से कराया है कि एक भी पैसा इसका नहीं है उसमें, मगर क्रेडिट तो मिल रहा है उसको, मेहनत करा हुआ बेचारा, साथ दिया उनका, सपोर्ट करा उनके। तो गर्ज ये है कि कामा कर लो दून, अगर पहले तो दीन का मिजाज नहीं बनेगा, और अगर बन गया अल्लाह दूसरे बहुत से असबाब जमा हो के थोड़ा सा दीन का रुझान बन गया है, दीन के काम कर लो लेकिन दीन की मेहनत ना करो। क्यों? इस वास्ते कि मेहनत के जरिए से जो बुनियाद बढ़ पड़ती है, मेहनत से जो माहौल बनता है, मेहनत के असरात में है ईमान जिंदा होना, जिसको हिदायत कहते हैं। मेहनत के असरात में है ईमान जिंदा होना, बकौल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के, मेहनत के असरात में है यकीन का बनना और जज्बे का बनना। जब यकीन और जज्बा आदमी का अंदर आ जाता है तो जितने इरादे होते, जितनी सोच होती है वो यकीन और जज्बे के ताबे होती है, और जितने इरादे होते हैं वो सोच के ताबे होते हैं, और जितने काम होते हैं वो इरादे के ताबे होते हैं। यकीन आदमी, मेहनत से यकीन, यकीन से सोच, सोच से इरादा, इरादे से अमल। जितने अमल खराब हैं इरादा खराब होने की वजह से खराब, जितने इरादे खराब हैं सोच खराब होने की वजह से खराब, जितनी सोच खराब है यकीन खराब होने की वजह से खराब। मेहनत करेंगे हम अपने, हमारे बच्चे, बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे मेहनत में लगेंगे तो बच्चों का यकीन और जज्बा बनेगा, अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने का जज्बा, अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का जज्बा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुमरे में शामिल होने का जज्बा। कल मैदान हशर में, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, कल एक जुमला एक बुजुर्ग का लिखा हुआ देखा तो मेरी तबीयत एक थोड़ी देर के लिए, बाजी चीज़ें एकदम जब नई सामने आती है तो आदमी को सरप्राइज सा होता है ना, वैसा हो गया मुझे। उन्होंने दुआ की है, उसमें लिखा है कि या अल्लाह मुझे कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुमरे में शामिल फरमा जैसा तूने दुनिया में उनकी उम्मत में मुझे शामिल किया। तो जहन अचानक गया मेरा, मतलब यह है कि दुनिया में हुजूर की उम्मत में होने से आखिरत में ज़ुमरे में होना ज़रूरी नहीं है। आखिरत में ज़ुमरे में होना जब है जब ये उम्मती पना कबूल हो, उनकी बात का मतलब ये है वहाँ पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीक अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इला जन्नति ज़ुमरा, वसीक अल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, है ना। तो ज़ुमर ज़ुमर की शक्ल में, ग्रुप ग्रुप की शक्ल में होंगे वहाँ। मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, है ना वहाँ का उसूल। यहाँ तो उम्मत गुनहगार है, फरमाबरदार है, नेक है, बद है, बिदती है, सुन्नती है, इससे कोई बहस नहीं है, सब हुज़ूर की उम्मत है। लेकिन वहाँ सबको ठहरने थोड़ी देंगे उनके साथ, वहाँ थोड़ी सब उनके ज़ुमरे में शामिल होंगे। तो वो जो उन्होंने लिखा उसमें है कि अल्लाहुम्म जालना फी ज़ुमरतिही यौमल हशर कमा जालतना मिन उम्मतिही फी दुनिया, ऐसा कुछ जुमला है, पूरा जुमला याद नहीं है मुझे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, झटका सा लगा एकदम, अरे कैसी अजीब बात फरमाई हजरत ने, बोल के दुनिया में अगर हम हुजूर की उम्मत में हैं तो ये जज्बा होना कि कल मैं हुजूर के ज़ुमरे में रहूँ, यानी उनके ग्रुप में रहूँ। उस ग्रुप में हर आदमी को नहीं, हर उम्मती को नहीं दिया जाने वाला है उस ज़ुमरे के अंदर, उस ग्रुप के अंदर। यही वजह है ना कि हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी नमाज को छोड़ता है तो उसको किस ज़ुमरे में खड़ा किया जाएगा। फिरौन के साथ है ना, उसका हशर किसके साथ होगा? फिरौन के साथ होगा, हारून के साथ होगा, उबई के साथ होगा, फलां फलां के साथ होगा। तो ये ज़ुमरा बदल जाएगा, बावजूद इसके कि वो उम्मती था मगर नमाजी नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुमरे में शामिल होने का जज्बा, और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का जज्बा, और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का जज्बा, सुरखुरु होने का जज्बा, ये जज्बा जब आदमी के अंदर आता है तो उससे एक ज़ौक डेवलप होता है, बनता है, मिजाज बनता है, चाहत बन जाती है। उसके ज़रिए से फिर आदमी की सोच भी वैसे ही होती है, फिर उसके लिए मेहनत करना आसान, कुर्बानी देना आसान, तकलीफें बर्दाश्त करना अल्लाह के लिए आसान, मुजाहिदे करना आसान, पैसा खर्च करना आसान, वक्त लगाना आसान, चाहे लोग हमको चाह रहे हों, चाहे ना चाह रहे हों, अप्रिशिएट कर रहे हों ना कर रहे हों, कोई बात हमारी लेता हो ना लेता हो, फिर मेहनत तो हमें करना ही करना है। जो लोग इस तरह से लेके बात को चले और पूरी दुनिया में फैल गए, अल्लाह पाक ने आज उसके असरात ये दिखाए हुए हैं। वरना जो लोग 80 से यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछो कि ये मंजर पहले भी थे क्या? हम 85 में भी यहाँ गश्त के लिए आया करते थे, डिसिप्लिन ये थोड़ी था, ऐसा वही था वो पुराना वाला घर, वो भी कब बाद में लिए, लेने के बाद आए थे, हमारे तो वो भी नहीं था,
नहीं था 90 में।
अब देखो तो ये चीज़ मेरे दोस्तों भाइयों, जब लोगों ने मेहनतें की, कुर्बानियाँ दी, जिंदगियाँ लगा दी अपनी, अपनी अपना माल खर्च किया, अपना वक्त लगाया, और बिल्कुल ऐसे गुमनामी में चले गए कि कोई उनको जानता भी नहीं कि किसकी किसकी मेहनतें इसके पीछे हैं, किन देहातियों की मेहनतें हैं, कि मेवातियों की मेहनतें हैं, कौन कौन से लोग जमातों में आए थे, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, पैदल जमातों में फिरने वाले, साल साल के लिए फिरने वाले, सात सात महीने के लिए फिरने वाले, चार चार महीने के लिए फिरने वाले, एक मरतबा नहीं दसियों मरतबा, हज़ारों सैकड़ों हज़ारों मरतबा गश्तें करने वाले चले गए, कोई उनको याद रखने वाला नहीं, मगर जिसके लिए उन्होंने किया था वो कभी भूलता नहीं, जिसके लिए किया गया वो कभी भूलता नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, हमें अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस दीन की मेहनत को अपनाना है। अब ये इज्तिमा हमारा आ रहा है, इस इज्तिमा को, इस इज्तिमा में हम अग्रेसिव होकर, जज्बा लगा के, अपना शौक लगा के, थोड़ा सा फिकर लगा के ये कामयाब हो जाए, अपने सर्कल के अंदर थोड़ी सी हरकत आ जाए, अपने हलके के अंदर एक हरारत आ जाए, गर्मी आ जाए, लोगों में फिकर आ जाए, सोच आ जाए, क्योंकि जब फिकर चलती है और आप हाथ हलाएंगे, पैर हलाएंगे और उसमें जाने वाला लोगों में लाएंगे, वो चीज़ मोशन पैदा करेंगे, लोगों में मोमेंट लाएंगे, तो सब सोचते पे, हरकत करने पे आ जाएंगे, उसमें से फिर कुछ लोग छट छटा के अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हो जाएंगे, फिकर लेने वाले हो जाएंगे, जमा होंगे, बात सुनेंगे, और फिर वो अल्लाह के रास्ते में जाएंगे चार चार महीने के लिए, चालीस चालीस दिन के लिए, फिर वो असरात लेकर वो वापस आएंगे, फिर उनका खैर मुतादी होगा, फैलेगा। ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है, तो इसलिए मुतवज्जे करना मकसूद है उन बुज़ुर्गों का, हमें भी आपको भी, कि ये जो इज्तिमा आ रहा है, इस इज्तिमा के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी हो जाए अपने अपने सर्कल के एतबार से। दो हफ्ते कुल रह गए हैं, तबीयत तो ये चाहती है कि ये जितना मजमा इस वक्त आया हुआ है ये सारा का सारा दो हफ्तों के लिए कुछ प्लान कर ले, कि भाई इस इज्तिमा तक के लिए मेरी प्लानिंग ये है, और फिर उसके बाद का कुछ वक्त अल्लाह पाक के रास्ते में निकल जाए वो और नूरुन आला नूर, और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी में मुस्तकिल वो प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, कि भाई जैसे हमें जॉब करना है, जैसे दुनियावी ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसे हमें आखिरत के लिए कुछ ना कुछ करना ही करना है, क्योंकि ये तो अल्लाह ने दिया ही इसीलिए ताकि हम उसको करें, ज़ाया ना हो हमारी ज़िंदगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आदमी पिकअप लेता रहता है अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए। इसलिए अल्लाह पाक मुझे भी आसान करे, आपके लिए भी आसान करे, ये फरमाइए कि कौन कौन साथी जो है वो इज्तिमा तक के लिए किस तरह की नीयत करता है, हर साथी इरादा करे कुछ ना कुछ करे।